मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 2 जून 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस FEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक पर विस्तार के साथ बात कर रहे हैं। यूं कह लीजिए कि हालांकि है ये ऑडियो गाइडेंस, लेकिन आप इसे ऑडियो नोट्स कह सकते हैं। और ये टॉपिक इसमें ऐसे लिए जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसी के तहत आज के लिए मैंने जो विषय चुना है फ्रेंड, वो है वन बेल्ट वन रोड। मेरी समस्या आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले के एक डेली ऑडियो लेक्चर में जब ये सम्मेलन चल रहा था इस विषय पर चाइना में, मैंने आपसे वायदा किया था कि इस विषय पर मैं इंडिपेंडेंटली आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो सच ये है कि मैं अब इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से अपने उसी वायदे को फ्रेंड्स निभा रहा हूं, वन बेल्ट वन रोड। इस लेक्चर में हम सबसे महत्वपूर्ण दो बिंदुओं पर जोर देंगे। पहला होगा फ्रेंड्स कि ये जो वन बेल्ट वन रोड है, यह है क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन, इसको आप बेसिक्स कह सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा शब्द होगा कि इसकी बेसिक्स क्या है, क्योंकि इसके बेसिक्स को अगर आप एक बार जान लेते हैं तो इससे जो दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे किसी भी तरह के, वो आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत कितना इसके पक्ष में है, कितना इसके विरोध में है, विरोध में अगर है तो क्यों है, ये हम देखेंगे। इस पॉइंट को देखना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो अनसॉल्व्ड पेपर अभी तक हमारे पास हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उन देशों से जुड़े होते हैं जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र रहे हैं, और चीन पड़ोसी राष्ट्र है, पहली बात। दूसरी बात कि जब संबंधों के बारे में प्रश्न किए जाते हैं तो बहुत घुमावदार, बहुत जटिल प्रश्न नहीं होते। मैंने ये देखा है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में, वो इस तरह के होते हैं जो खूब काफी चर्चा में होते हैं और सामान्य स्तर के ही होते हैं, उसके लिए आपको बहुत गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है अगर आपको बेसिक्स मालूम है और भारत उसके बारे में क्या सोचता है। बस आपको अगर ये दो पॉइंट मालूम है तो उस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप बड़े आराम से 200-250 शब्द लिखने की स्थिति में आते हैं, और उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर भी हो जाती हैं, उसमें कोई शॉर्टकट की बात नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो वन बेल्ट वन रोड पर जो मैं बात करूंगा, वो इन्हीं दो तथ्यों को रखकर बात करूंगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वन बेल्ट वन रोड है क्या। फ्रेंड्स, यहां मेरी एक सलाह है, और सलाह यह है कि अब मैं जब थोड़ी सी बातें करने जा रहा हूं तो प्लीज आपके पास नक्शा होना चाहिए, एटलस, या तो वर्ल्ड मैप हो या एटलस में आप उस पेज को निकाल लीजिए जो पॉलिटिकल मैप हो, क्योंकि उस तभी आप इसे समझ सकेंगे। देखिए, वन बेल्ट वन रोड, इसका मतलब है कि एक बेल्ट जैसा होगा, जोन जैसा होगा, जिसे आप कटिबंध कह लीजिए, और एक सड़क होगी, रास्ता होगा। कुल मिलाकर के वन बेल्ट वन रोड और कुछ भी नहीं है। आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि एक चाइना का एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए चाइना बेसिकली तीन तरह के रास्तों से, यह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तीन तरह के साधन कौन से होंगे, एक बाय रोड, दूसरा बाय रेलवे, हालांकि रेलवे भी ठीक है, रोड होता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट को अलग अलग करके भी हम देखते हैं, बाय रोड, बाय रेलवे और बाय नेविगेशन, जल मार्ग। इन तीनों मार्गों के जरिए, तीन तरह के मार्ग हो गए, इसमें वायु मार्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन मार्गों के जरिए किन किन को जोड़ने की बात कह रहा, देखिए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों को जोड़ दिया जाए। कल्पना करके देखिए, देखिए चाइना खुद एशिया में ही है और ये सब चाइना से जुड़ेंगे, ये जितने भी यूरोप अफ्रीका, ये यूरोप और अफ्रीका के देश जुड़ेंगे, ये चाइना से जुड़ेंगे। तो एशिया में खुद चाइना है, दूसरा आप अफ्रीका को जोड़ रहे हैं और आप यूरोप को जोड़ रहे हैं। मैप में देखिए, अब आप जब मैप देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा। तो इन तीनों कॉन्टिनेंट को आप जोड़ ले रहे हैं। अब कौन से कॉन्टिनेंट बचे? बेसिकली जो आबादी वाले कॉन्टिनेंट है तीन बच गए, एक तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका बच गया। तो उसके लिए फिर आपको और दूर जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तो दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको अभी चाइना ने छोड़ दिया, इनके लैटिन अमेरिकी देशों पर अभी वो प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं कर रहा, हम ये समझ लें। और एक ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही छोटा सा कॉन्टिनेंट है, है ना, कुल 2.5-3 करोड़ की आबादी है। तो शायद चाइना को लग रहा होगा कि नहीं, इसको तो छोड़ देते हैं, क्या मतलब है, कुछ ज्यादा आबादी है नहीं तो बाजार तो ज्यादा मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों में उसको खूब जमकर बाजार मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो वन बेल्ट वन रोड जो है वो चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए वह सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा तीन महाद्वीपों को, एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है फ्रेंड्स, आप इसको इसी से समझ सकते हैं कि इस योजना के लिए 50 जो सरकारी कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, 50 सरकारी कंपनियां। और इस पूरे के पूरे रास्ते पर लगभग 1700 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 1700 जिसमें बंदरगाह बनाए जाएंगे, जिसमें सड़कें बनाई जाएंगी, जिसमें रेलवे लाइंस बिछाए जाएंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पार्क्स भी लगाए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां उद्योग लगाए जाएंगे। और अगर हम पॉपुलेशन और दूसरी दृष्टि से बात करें तो इस पूरे के पूरे एरिया से जो चाइना दावा कर रहा है कि लगभग 4.4 अरब लोगों को, दुनिया की आबादी हम 6.5-7 अरब मान करके चलते हैं, तो 4.4 अरब लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा। आप कह लीजिए कि लगभग 2/3 आबादी, 60% पॉपुलेशन, और 65 कंट्रीज इससे जुड़ जाएंगे, 65 कंट्रीज, सोच करके देखिए, यानी मोटे तौर पर कह लीजिए कि 65% पॉपुलेशन और 65% कंट्रीज, 65 कंट्रीज इससे जुड़ जाएंगे। और वैसे भी जो अभी सम्मेलन हुआ था तो उस सम्मेलन में आपने देखा कि काफी देशों ने भाग लिया है, 28 देश के तो हेड ऑफ द स्टेट आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, और 60 और भी जो दूसरे देश थे उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुछ देशों ने आपत्ति दिखाई है, मतलब इसके प्रति सहमति व्यक्त नहीं की है, जिसमें पुर्तगाल है, ब्रिटेन है, साथ फ्रांस भी है, कुछ ऐसे देश हैं जो और बड़े महत्वपूर्ण देश हैं जिन्होंने इसे अभी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन चाइना की तो खैर कोशिश चलती रहेगी, देखते हैं आगे स्थिति क्या होती है। दोस्तों, जो न्यूज में आप जो बातें पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो इनफैक्ट क्या है, ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो जाए। एक आप कॉरिडोर शब्द सुनते हैं, गलियारा, है ना, जैसे गली बनती है तो एक पूरा का पूरा रास्ता, लंबा रास्ता, उसे हम कॉरिडोर कहते हैं। एक तो आपके दिमाग में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो न्यू सिल्क रोड जो कहा जाता है ना, सिल्क रोड, रेशम मार्ग, नवीन रेशम मार्ग, इसी का नाम है, मॉडर्न नाम है वन बेल्ट वन रोड परियोजना। यानी कि जो पुराना सिल्क मार्ग था उसी को उस पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। ये सिल्क मार्ग क्या था, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिए, ये असल में ये बहुत पुराना रूट है, लगभग 1500 साल पुराना एक रास्ता है। इस रास्ते का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था और लंबे समय तक किया जाता रहा। कौन कौन व्यापार करते थे, 5वीं से 8वीं सदी तक, 5th century to 8th century, लगभग 300 सालों तक चाइनीज, अरबी, तुर्की, भारतीय भी उसमें शामिल थे, पारसी, सोमालिया के लोग, रोम के लोग, सीरियाई और अर्मेनियाई, यहां के जो व्यापारी हैं इस सिल्क रोड का इस्तेमाल करते थे। सिल्क नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि चाइना में सिल्क बहुत अच्छा उस समय होता था, तो सबसे ज्यादा व्यापार सिल्क का ही होता था, हालांकि घोड़ों का भी व्यापार उतनी संख्या में होता था, तो सिल्क इसका नाम पड़ गया। और एक बात और भी यहां ध्यान देने की है कि जब आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चाइना शुरू से ही व्यापार के प्रति बड़ा संवेदनशील रहा है, बहुत ही सतर्क रहा है, व्यापार को बहुत ज्यादा महत्व देता है। आप यही कल्पना कर लीजिए फ्रेंड्स कि जो व्यापार इस सिल्क रूट पर सही तरीके से होता रहे, इसको ध्यान में रखकर के चाइना ने जो चीन की दीवार कहते हैं, जो विश्व के 8 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है, इसका निर्माण किया, ये इस सिल्क रूट को प्रोटेक्ट रखने के लिए, ताकि लूट मार न हो और बड़ी सुरक्षा के साथ व्यापार आगे बढ़ता जाए। अब तो हालत यह है कि 2014 में इस सिल्क रूट के कुछ हिस्से को एक विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दे दी है। तो बेसिकली ये जो ओल्ड सिल्क रूट है, इसे ही अब चाइना वन बेल्ट वन रोड परियोजना के नाम से आगे बढ़ा रहा है। इसमें दोस्तों कुल मिलाकर के 6 इकोनॉमिक गलियारे बनाए जाएंगे, 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देखिए जो 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, इनके मैं आपको थोड़े से नाम बता देता हूं, आपके जेहन में बस थोड़ा सा रहेगा। एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको याद करना है, ये आपको स्पेशली याद भी रखना है, और इसलिए याद रखना है क्योंकि भारत का संबंध इसी कॉरिडोर से है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी का भारत ने विरोध किया है। आपको मालूम है फ्रेंड्स, अखबार आप लगातार पढ़ ही रहे हैं कि अभी जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में भारत नहीं गया, भारत उस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि यह हमारी प्रभुसत्ता का उल्लंघन है। तो प्रभुसत्ता का कैसे उल्लंघन हो गया, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा जानने की बात है। वो इसलिए कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है, इसमें चीन पाकिस्तान में कुछ निर्माण कर रहा है और पाकिस्तान के उस हिस्से में निर्माण कर रहा है जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि वो पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसे अपने कब्जे में ले रखा है। तो किसके जरिए, किसका है ये, भारत उस पर अपना अधिकार जमाता है, अधिकार जमाता है, क्या वो भारत का है ही, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, इसीलिए हम उसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, तो कश्मीर का नहीं है। अगर भारत इस सम्मेलन में चला जाता तो साफ ये होता कि भारत ने चाइना के उस कार्यवाही को मान्यता दे दी है, और अगर भारत ने मान्यता दे दी है, इसका सीधा सा मतलब फिर ये निकलता कि वह जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि वो उसका हिस्सा नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है, विवादास्पद है, मतलब चाइना विवादास्पद मानता है, भारत उसे विवादास्पद मानता ही नहीं, भारत उसे अपना ही मानता है। ये जो चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है फ्रेंड्स, ये चाइना से पाकिस्तान से शुरू होगा, इसको हम सी पैक भी कहते हैं, ये शब्द आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा, इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, ई फॉर ई और सी फॉर कॉरिडोर, तो इसको कहीं कहीं आपको सी पैक भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो याद रखिए कि ये पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का ही नाम है। इसमें जो रूट बनाया गया है वह है चाइना का शिकियांग और पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, ये इन्हें आपस में जोड़ेगा, और केवल इन्हें आपस में ही नहीं जोड़ेगा, फिर ये आगे चल करके और दूसरे रास्तों से मिलता हुआ गुजरेगा, क्योंकि जब वो जहां से गुजरेगा वहां भारत के फिर बहुत ही करीब में आपको चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो रूट बन रहे हैं इस पूरे के पूरे वन बेल्ट वन रोड का जो रूट होगा उसके खासकर दो रूट हैं, सबसे बड़े दो रूट हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैप में आप देखेंगे तो इसे ज्यादा अच्छे से फ्रेंड्स समझ पाएंगे। दो रूट है। पहला तो जमीनी रास्ता है जो सड़क से जाएगा, सड़क में दोनों चीजें शामिल हो जाएंगी ना, सड़क भी है और रेल भी है। ये जो है मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ेगा। अब देखिए, आप अगर एटलस निकालेंगे आप तभी उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि वो मध्य एशिया से यूरोप में कैसे जुड़ेगा। सुनने से समझ में नहीं आएगा, तो अच्छा होगा कि आप एटलस निकाल लें और प्लीज उसमें आलस्य दिखाएं भी ना। मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ेगा और इसे ही सिल्क रोड कहा जाता था। जो दूसरा रोड है वो समुद्री मार्ग का है। समुद्री मार्ग से किसको जोड़ेगा, देखिए अब यह होगा चीन को दक्षिण पूर्वी एशिया से। चीन चलेगा, नीचे उतरेगा, आप मैप में आ जाइए, चीन से आइए, फिर वो दक्षिण पूर्वी एशिया के नीचे से निकलेगा, दक्षिण चीन सागर से होगा, फिर मलेशिया, फिर इंडोनेशिया, फिर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के पास फिर वो ढाका पहुंच जाएगा। आप देखेंगे ढाका पहुंचने के बाद फिर वो एकदम श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह, आप सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, वो यहां पहुंच जाएगा हम्बन टोटा बंदरगाह से। फिर वो आगे निकलेगा, अब वो वेस्ट में जा रहा है, मैं आपको रूट ही बता रहा हूं नक्शे में देख करके, वेस्ट में जा रहा है। इसके बाद फिर वो मोगादिशु पहुंच जाएगा और इसके बाद फिर सोमालिया, फिर जिबूती होते हुए, फिर मिस्र होते हुए वो स्वेज नहर पहुंच जाएगा और फिर इटली और फिर चेक गणराज्य होते हुए टर्की, इस तरीके से वो पहुंच जाएगा। तो ये बहुत लंबा रूट है, समुद्री जो रूट है ये बहुत लंबा रूट है, ये यहां पहुंच जाएगा। और जब वो दक्षिण चीन सागर में जाएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो दक्षिण चीन सागर से चलेगा तो उसमें जो जोड़ने वाले जो देश होंगे वो इंडोनेशिया होगा, बंगाल की खाड़ी है, श्रीलंका ही है, भारत है, पाकिस्तान है, ओमान है, फिर वो इराक तक वो चला जाएगा। तो दोस्तों इसके दो ये मेन रूट है, पहला है सड़क के जरिए जिससे ये मध्य यूरोप को मध्य एशिया यूरोप से जुड़ेगा, और दूसरा ये सी रूट है जिसमें वो दक्षिण चीन सागर से उतरते हुए और फिर अफ्रीका होते हुए फिर वो यूरोप तक पहुंचेगा। ये इसके दो रूट हैं। तो मित्रों अब जो बच जाता है वो ये है कि भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। देखिए इसके दो तीन बहुत स्पष्ट रीजन है। पहली बात तो यह मैंने आपको बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर में चूंकि चीन ने अपना काम शुरू कर दिया है तो भारत इसका विरोध करेगा ही और इसका जायज हक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब चीन की महत्वाकांक्षा को भारत समझ रहा है। चीन अब उसको लग रहा है कि जैसे अब अमेरिका तो अब धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि ट्रंप के समय में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, विश्व राजनीति से अपने को विड्रा कर रहा है, तो चाइना को लग रहा है कि अब ये बहुत अच्छा मौका है जब वो विश्व की नंबर एक शक्ति बन सके। तो विश्व एक नंबर वन शक्ति बनने का एक जो उपाय उसे दिखाई दे रहा है, ये इकोनॉमिक उपाय दिखाई दे रहा है कि इन देशों से जुड़ जाए तो इसको एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा, बहुत बड़ा बाजार। वैसे भी आपको मालूम है कि चीन की जो इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा, तो वहां वह अपना सामान बेच सकेगा और साथ ही साथ वहां के प्राकृतिक संसाधनों का भी वो उपयोग कर सकेगा, तो इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। और भारत इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, भारत इसमें अपनी कमी को भी देख रहा है क्योंकि जो चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो भारत की तुलना में 5 गुनी ज्यादा बड़ी है, और अगर ये आर्थिक पावर बन जाता है तो डेफिनेटली फिर विश्व राजनीति में कहीं ना कहीं भारत उससे दबेगा। तीसरी स्थिति ये है फ्रेंड्स कि जो पोर्ट बनाएगा ये, जैसे आपके श्रीलंका में हम्बन टोटा है, वो पोर्ट उसको मिल जाएगा, और भी ये पूरा का पूरा जो समुद्री रास्ता है इस पर चीन का अधिकार होगा। तो आप सोच करके देखिए कि नेवी पावर की दृष्टि से, नेवल पावर की दृष्टि से चाइना कितना शक्तिशाली बन जाएगा। तो सामरिक दृष्टि से भी, अगर युद्ध की रणनीति की दृष्टि से भी देखें तो ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि चीन इतना शक्तिशाली बन जाए, क्योंकि भारत का अनुभव चाइना के साथ कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। 1962 का वार है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के वो बार बार अलग तरीके के संकट खड़ा करता रहता है, कभी तिब्बत के मामले को वो उठा देता है, फिर पाकिस्तान के साथ अपनी वो दोस्ती बढ़ाता चला जा रहा है, अब रशिया भी थोड़ा सा पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है, भारत कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी मित्रता बढ़े तो शायद अमेरिका पाकिस्तान से अपने को विड्रा करे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। फिर चाइना इन छोटे छोटे देशों को जो भारत के पड़ोसी देश रहे हैं अब इस गलियारे के माध्यम से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है। मित्रों, कहा जाता है कि शुरू में अमेरिका और रूस जैसे देश अभी जो सम्मेलन हुआ है वन बेल्ट वन रोड का, इसमें जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंततः वो गए। नेपाल भी जाने के पक्ष में नहीं था लेकिन वो भी गया, क्योंकि इनको अब एक लालच दिखाई दे रहा है। लालच ये दिखाई दे रहा कि इससे हमारा आर्थिक विकास होगा, इससे हमारे संसाधनों का इस्तेमाल हो सकेगा, इससे हमारे यहां औद्योगिक विकास होगा, हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। चाइना इस तरह के प्रलोभन दिखा रहा है, तो उनके अपने आकर्षण हैं। विश्व स्तर पर भारत की बात अभी इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि चाइना इसके लिए ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, विश्व आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहा है, विश्व व्यापार की बात कर रहा है, खुलेपन की बात कर रहा है कि इससे तो पूरी दुनिया के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो दुनिया को यह भी लग रहा है कि हाँ, चाइना जो बात कह रहा है वो सही तो है। तो इसकी वजह से भारत की आवाज थोड़ी सी मित्रों दबी हुई सी रह रही है। तो मेन तीन कारण है, देखिए, एक तो पाक अधिकृत कश्मीर संप्रभुता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, दूसरा चीन बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में इमर्ज हो जाएगा, यह भी आप कह सकते हैं कि इनका एक्सप्लाइटेशन शुरू हो जाएगा, जो जितने भी देश इस रूट पर आएंगे तो इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन शुरू हो जाएगा, और तीसरा यह है कि भारत की जो सामरिक जो स्थिति है वो कमजोर हो जाएगा और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो एक शक्ति संतुलन है वो खराब हो जाएगा और वो चाइना के पक्ष में ज्यादा झुक जाएगा। तो ये तीन चार रीजन है जिसकी वजह से भारत इसका विरोध कर रहा है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि जो बहुत ही बेसिक चीजें थी, थोड़ी सी जो एनालिटिकल एक जो आपके दिमाग में इनपुट्स होने चाहिए थे, वो इस लेक्चर के माध्यम से आपको मिल चुके होंगे। जब इसे आप एक दो बार और सुनेंगे, नक्शे की मदद से सुनेंगे, तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। तो मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आज शुक्रवार है, तो शनिवार और रविवार को अब दो दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। तो दोस्तों, इन दो दिनों के लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि ये छुट्टी के ये दो दिन आपके बहुत बेहतर तरीके से गुजरें। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।